Santi, आज देश मार्च 2025 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुनें और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो से डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप लिंक प्राप्त कर सकते हैं, गूगल मीट का और यूट्यूब लाइव का। एक ही लिंक रहता है चारों समय के लिए। यदि आपको जुड़ने में कठिनाई आ रही है, दिक्कत आ रही है, तो आप इसी वीडियो में जो सामने चल रहा है, नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर आप मैसेज करके लिंक प्राप्त कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, अपना कोई सुझाव हम सबके हित में दे सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कैसे मीठे बच्चे इस पुरानी दुनिया में अल्पकाल क्षण भंगुर सुख है। अल्पकाल क्षण भंगुर सुख है, ये साथ नहीं चल सकता। साथ में अविनाशी ज्ञान रत्न चलते हैं, ये सुख साथ क्यों नहीं चल सकता। ये अल्पकाल का क्यों है? रावण राज्य अल्पकाल का क्यों है? ये सदा काल
सुख है भाई जी।
हाँ जी,
जिस्मानी सुख
है। जिस्मानी सुख सुख अल्पकाल का होता है
जी भाई जी।
ये जिस्मानी सुख है, ये नाशवान सुख है, ये झूठा सुख है, झूठी काया, टेम्परेरी। कितनी टेम्परेरी है, कितनी टेम्परेरी है कि हर सेकेंड के साथ साथ ये शरीर बदलता जाता है। हर सेकेंड के साथ साथ ये शरीर बदलता जाता है, इससे प्राप्त होने वाला सुख भी बदलता जाता है। ये परमानेंट नहीं रह सकता, क्योंकि ये परिवर्तन के साथ जुड़ा हुआ है। आत्मा अविनाशी है, हालांकि आत्मा भी परिवर्तन के साथ जुड़ी हुई है, यानी कि वो परिवर्तन से अलग है, उसमें भी हर क्षण परिवर्तन आ रहा है। परंतु आत्मा परमानेंट है, परंतु ये देह परमानेंट नहीं है, क्योंकि ये किसी दूसरे पर डिपेंडेंट है। ये पांचों तत्व एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट है, इनमें से एक भी तत्व काम ज्यादा आगे पीछे होता है तो इसकी अवस्था चेंज होती जाती है, ये बिखर जाता है। वो अकेला है, उसके बिखरने का कोई मतलब नहीं। आत्मा छठा ब्रह्म महातत्व है, उसके बिखरने का कोई मतलब नहीं। उसमें स्वयं में परिवर्तन आता रहेगा, उसके अंदर जो हमारी रिकॉर्डिंग है वो मर्ज और इमर्ज होती रहेगी, परंतु वो बदल नहीं है। उसमें पतित से पावन और पावन से पतित बनने का नियम है, परंतु उसने रहना है। जैसे पानी है, पानी में परिवर्तन होने का नियम है, वो भाप बन के उड़ सकता है, वो बर्फ बन के जल सकता है, वो किसी चीज के साथ मिलकर उसके किसी रूप को बदल सकता है, जंग लगाने में जिसके साथ भी पानी मिल जाता है उसको जंग लग जाता है, चाहे वो पीतल हो, चाहे वो लोहा हो, चाहे कुछ भी हो, उसको परिवर्तन कर देता है, परंतु वापिस वो भी अपने उसी रूप में चला जाता है और पानी भी वापिस अपने रूप में चला जाता है। तो ये परिवर्तन आता है, परंतु आत्मा परमानेंट है, अपने आप में यूनिक है। जैसे पानी यूनिक है, जैसे अग्नि यूनिक है, जैसे पृथ्वी, जो भी एलिमेंट है सब अपने आप में यूनिक है, ऐसे ही आत्मा भी एक यूनिक एलिमेंट है जो हमेशा रहता है। परंतु शरीर जो है ये न था, न है, न रहे, ये समय अनुसार अलग अलग परिस्थितियों में बदलता रहता है। इसलिए इससे प्राप्त होने वाला सुख भी परमानेंट नहीं हो सकता। ज्ञान रतन आत्मा में मर्ज है, परंतु परमात्मा या कोई भी अन्य आत्मा या कोई भी अन्य माध्यम बनता है, जिसके कारण वो ज्ञान जो मर्ज था, जिस समय उसे इमर्ज होना है, तो वो किसी न किसी कारण से इमर्ज हो जाता है। जैसे जामवंत ने हनुमान जी को बता दिया, कहानी है परंतु बताया तो उसे याद आ गया, ऐसे ही परमात्मा भी हर कल्प आकर हमें याद दिलाते हैं और हमें याद आ जाता है, और हम हर कल्प उसी समय उसी प्रकार से अपने पाठ को बजाते हैं।
हनुमान जी क्या बताते थे जामवंत जी?
हनुमान जी को बताया जामवंत ने कि तुम उड़ सकते हो, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, तुम सूरज तक जा सकते हो, बचपन में वो सूर्य को निगल गए थे, तुम सूर्य तक जा सकते हो, तुम इस समुद्र को पार करके सीता तक जा सकते हो। बस उसको यही एक श्राप मिला था कि जब, क्योंकि वो अपनी जो शक्ति थी उसका दुरुपयोग कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने सबसे बड़ा दुरुपयोग की अति ये थी कि उन्होंने जाकर सूरज को भी जो है मुंह में निगल लिया, तो सब ने उसको मतलब रिक्वेस्ट किया, प्रार्थना किया, फिर उसको श्राप दिया गया था कि आज के बाद तुम ये भूल जाओगे कि तुम इतना दूर तक इतनी शक्तिशाली हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, तो वो भूल गए। उसके बाद वो साधारण जीवन जीते रहे, उन्हें कभी ये याद नहीं आया कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ, मैं क्या क्या कर सकता हूँ, तो ये बचपन में ही उनको श्राप मिल गया था। तो श्राप के साथ उन्हें ये भी था कि यदि कोई तुम्हें याद दिला देगा तो तुम फिर से अपनी उन शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे। तो याद दिलाया तो वो उड़ के चला गया, समुद्र पार करके, पहाड़ उठा करके सारे काम करने में सक्षम हो गया, क्योंकि उसको सारी शक्तियां याद आ गई। ऐसे ही हम भी वास्तव में विकारों में जाने के कारण अपनी शक्तियों को भूल गए, हम श्रापित हो गए, हम सारी शक्तियों से संपन्न आए थे, परंतु धीरे धीरे अपनी शक्तियों को भूल गए। अब परमात्मा आकर हमें हमारी सत्य स्मृति दिलाते हैं, जिससे फिर हम उसी प्रकार से वापस अपने उसी स्वरूप को प्राप्त करते हैं जो कल्प पहले हमने प्राप्त किया था। इसलिए बाबा कहते यह अविनाशी, साथ में अविनाशी ज्ञान रत्न चलते हैं। सतयुग के अंदर हम ज्ञान अविनाशी ज्ञान रत्नों के आधार पर जो संस्कार बनाकर जाते हैं वो हमारे साथ चलते हैं, और ये संस्कार भी मर्ज और इमर्ज होते हैं, परंतु टाइम के अनुसार, परंतु ये संस्कार शरीर के साथ जुड़े हैं और वो आत्मा के साथ जुड़े हैं। शरीर विनाशी है इसलिए ये सुख भी विनाशी है। आत्मा जाएगी ये शरीर नहीं जाएगा, आत्मा पवित्र बन गई है तो शरीर भी पवित्र मिलेगा, संस्कार भी उसी अनुसार शरीर के साथ चलेंगे। इसलिए अविनाशी कमाई जमा करो, क्योंकि शरीर तो हमारे साथ जाने वाला नहीं है, आत्मा के साथ संस्कार जाने वाले हैं जो परमात्मा आकर दे रहे हैं, इसलिए हम उन संस्कारों को क्रिएट करें, उन संस्कारों की रचना करें, उन संस्कारों को अपने जीवन में स्थापन करें, जिनके आधार पर हम स्वर्ग में, सतयुग में, स्वर्णिम दुनिया में जा सकें। ये अविनाशी कमाई जमा करनी है जो परमात्मा आकर अब हमें दे रहे हैं। प्रश्न, बाप की पढ़ाई में तुम्हें कौन सी विद्या नहीं सिखाई जाती? बाप इतनी बड़ी पढ़ाई पढ़ाता है, इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ाता है, अविनाशी पढ़ाई पढ़ाता है, उसके अंदर भी कुछ न कुछ छोड़ देता। क्या छोड़ देता, क्या नहीं सिखाता?
किसी के मन का जानना,
भूत विद्या, भूत विद्या नहीं सिखाता। अब ये भूत विद्या क्या बोला होती है भाई? भूत, भूत का मतलब समझना है बीता हुआ, भूत का मतलब समझना है नाशवान, यानी भूत का मतलब समझना है पांच तत्व, मतलब जिनको भूत कहा जाता है, जो हमेशा स्थिर नहीं रहते हैं, किसी के संकल्पों को रीड करना। ये आज का जो विषय है बड़ा बड़ा वंडरफुल है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। भूत विद्या किसी के संकल्पों को रीड करना, संकल्पों को रीड करना, ये भूत विद्या। क्यों इसको
किसी के पास्ट को जानना,
रीड करना, किसी के मन में जो संकल्प चला चल रहा है वो हर सेकंड बीतता जा रहा है, बीतता जा रहा है, इसलिए उसने जो सोचा, मैंने रीड किया, अब मैंने बताया, अब मैंने बताया, तो ये क्या है, भूत हो गया। ठीक है कि नहीं? ये भूत विद्या है। ये जो भी संकल्प चल रहे हैं, ये शरीर के द्वारा, शरीर के चल रहे हैं, संसारिक चल रहे हैं, तुम्हें ये विद्या नहीं सिखाई जाती। बाप कोई थॉट लीडर नहीं है, बाबा खुद कहता है कि मैं भी थॉट लीडर नहीं हूं। तुम्हारे मन में क्या संकल्प चल रहे हैं, मैं उनको रीड नहीं करता हूं। वे जानी जाननहार है। परमात्मा कहते हैं, मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में क्या संकल्प चलेंगे, मैं इन एडवांस जानता हूं कि तुम्हारे पास इन जनरल क्या क्या संकल्प चल सकते हैं, परंतु मैं किसी के थॉट रीडिंग नहीं करता, मैं किसी के थॉट को रीड नहीं करता। मैं जानी जाननहार हूं, नॉलेजफुल हूं। बाप आते हैं तुम्हें रूहानी पढ़ाई पढ़ाने, जिस पढ़ाई से तुम्हें 21 जन्मों के लिए विश्व की राजाई मिली। मैं आकर तुम्हें सत्य ज्ञान देता हूँ, ट्रुथ देता हूँ, जिससे तुम 21 जन्मों के लिए अपना भाग्य खुद लिखते, अपना भाग्य खुद लिखते हो। थॉट रीडिंग से हम किसी के भाग्य को बदल नहीं सकते, हम किसी के भाग्य को बना नहीं सकते। और थॉट रीडिंग, बाबा कहते, तुम्हें सहज हो जाएगी, सिखाता नहीं हूं, वो सहज हो जाएगी। ये भी बाबा ने कहा। कैसे हो जाएगी? श्रीमत तो सारी जगह चलती है, परंतु श्रीमत का मतलब क्या है? श्रीमत क्या श्रीमत होती है? हर टाइम के लिए श्रीमत हमें बाबा अलग अलग देते हैं। इसके अंदर हमारे पास बाबा ने कहा, बच्चे जब तुम साइलेंस में जितना रहने का अभ्यास करेंगे, जितना आप साइलेंस में होंगे, जितना आपके अंदर संकल्प की गति कम होगी, सामने वाले के विचार आपको समझ में आएंगे, सामने वाले के थॉट आपके सामने स्पष्ट होंगे। आपको पढ़ने के लिए कोई कला सीखने की जरूरत नहीं है, मतलब कोई कला सिखाते नहीं है, परंतु ये आपकी योग्यता हो जाती है कि आप उसे समझ सकते हैं। आगे वाला जो आपके सामने आया है उसकी नियत क्या है, उसके विचार क्या है, वो क्या करने वाला है, बोला आपको साफ दिखाई देगा, आपको समझ में आएगा। परंतु आपको कोई कला नहीं सीखनी है, जैसे दुनिया में आर्ट है, ये इसको दुनिया वाले सीखते हैं, स्पेशल ट्रेनिंग करते हैं कि हम दूसरे के थॉट को रीड कर सकें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपके पास आएंगे आपको समझ में आ जाएगा, परंतु उसके लिए बाबा ने मुरली में जो मैंने जो पढ़ा है बाबा के शब्दों में मुझे अब याद आ रहा है कि बाबा कौन सी मुरली है तो मैं नहीं बता पाऊंगा क्या कौन सी देश की मुरली है, परंतु ये है कि बाबा ने कहा कि जब आप साइलेंस में होंगे, साइलेंस की शक्ति से आपके पास आने वाले के थॉट आपको समझ में आएंगे कि वो क्या चाहता है, उसको क्या चाहिए, उसे क्या देना है, मतलब आप उसको पूछना नहीं पड़ेगा। जैसे बाबा बाबा से किसी को पूछना नहीं पड़ता, मेरा अपना अनुभव है कि जितना भी समय हमने बाबा को मुरली चलाते हुए देखा, यही समझा, यही लोगों से समझ में आया कि जो हम सोच रहे थे हमें हमारे जवाब बिना पूछे मिल गए। आप कभी भी कोई मुरली उठाए, ये विशेषता है मुरली की कि आपको कोई बाबा को बताना नहीं पड़ता कि मेरे को ये बताओ, आप मुरली उठाए आपके मन में जो भी प्रश्न है जो भी समस्या है आपको मुरली में उसका समाधान मिलेगा। ये डिपेंड करेगा आपकी एकाग्रता पर कि कितना एकाग्र होकर आप मुरली में अपनी समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं। मतलब एकाग्रता साइलेंस दोनों जब तक नहीं होते हैं तब तक सफलता नहीं मिलती है। मुरली भी आप हम सिर्फ पढ़े से बता देगा ऐसा कुछ नहीं है, मुरली को समझना पड़ेगा तो आपको समझ में आएगा। ओम शांति। भारत में भारतवासी गाते हैं आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला चला। अब बच्चे जानते हैं हम आत्माओं का बाप, परम पिता परम आत्मा हमको राजयोग सिखला रहे, अपना परिचय दे रहे हैं और सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज भी समझाते। कोई तो पक्के निश्चय बुद्धि हैं, कोई कम समझते हैं, नंबर वार तो है ना। बच्चे जानते हैं हम जीव आत्माएं परम पिता परम आत्मा के सम्मुख बैठे, गाया जाता है आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला चला। अब मूल वचन में जब आत्माएं हैं तो अलग होने की बात नहीं, मूल वचन में जब आत्माएं हैं तो अलग होने की बात नहीं है, क्योंकि वही रहती है, सारी आत्मा वही है, परमात्मा भी वही है, बात ही नहीं होती। यहाँ आने से जब जीव आत्मा बनते, जब आत्मा क्या बनती है, जीव आत्मा बनती है जब आत्मा का जीवन शुरू होता है। आत्मा यहाँ आई, जीव आत्मा बनी, जीवन शुरू। परम धाम से आत्मा कितनी देर में पहुंच जाती होगी शरीर में, एक ही सेकंड के अंदर, दूसरा सेकंड नहीं आने देती कितनी भी दूरी से आए। तो परमात्मा बाप से सभी आत्माएं अलग होती, सभी आत्माएं क्या होती हैं, अलग होती हैं। परम पिता परमात्मा से अलग होकर यहाँ पाठ बजाने आते हैं, आगे तो बिगर अर्थ, आगे तो बिगर अर्थ ऐसे ही गाते थे, अभी तो बाप बैठ समझाते हैं। बच्चे जानते हैं परम पिता परम आत्मा से हम अलग हो यहाँ पाठ बजाने आते, तुम ही पहले पहले बिछड़े, तुम ही पहले पहले बिछड़े हो तो शिव बाबा भी पहले पहले तुमसे ही मिलते हैं। तुम्हारी खातिर बाप को आना पड़ता है। कल को पहले भी इन बच्चों को ही पढ़ाया था जो फिर स्वर्ग के मालिक बने। फिर क्या बन गए? वो स्वर्ग के मालिक बने। उस समय और कोई खंड नहीं था। बच्चे जानते हैं हम आदि सनातन देवी देवता, आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, जिसको डीटी रिलीजन, देवी धर्म डीटी डिनेस्टी भी कहते हैं। हर एक को अपना रिलीजन होता है। रिलीजन इज माइट कहा जाता है। धर्म में ताकत रहती है। तुम बच्चे जानते हो ये लक्ष्मी नारायण कितनी ताकत वाले थे। भारतवासी अपने धर्म को ही नहीं जानते, किसकी भी बुद्धि में नहीं आता। बरोबर भारत में इनका ही धर्म था। धर्म को ना जानने के कारण इरिलीजियस बन गए। धर्म को ना जानने के कारण इरिलीजियस बन गए हैं। रिलीजन में आने से तुम्हारे में इतनी कितनी ताकत रहती है। तुम आयरन एज पहाड़ को उठाए गोल्डन एज बना देते हो। आयरन एज पहाड़ को उठाए गोल्डन एज बना देते हो। भारत को सोने का पहाड़ बना देते हो। वहां तो खानियों में ढेर सोना भरा रहता है। सोने के पहाड़ होंगे जो फिर वे खुलेंगे, जो फिर वे खुलेंगे और सोने को गलाकर उनकी ईंटें बनाई जाती है। मकान तो बड़ी ईंटों का ही बनाएंगे ना। माया मच्छंदर का खेल भी दिखाते हैं ना। वे सब हैं कहानियां। ये सब क्या है? कहानियां हैं। बाप कहते हैं इन सब का सार में मैं तुमको सुनाता हूँ। दिखाते हैं ध्यान में देखा हम झोली भर कर ले जाते हैं। ध्यान से नीचे उतरा तो कुछ नहीं। सपना देखते ना, ध्यान और सपना। आप ध्यान से समझ रहे होंगे कि ध्यान और सपना एक ही बात है। ध्यान में गए तो बैठ गए तो ध्यान वाले क्या करते हैं? आंखें बंद कर लेते। ध्यान वाला आंखें खोल करके नहीं बैठते। इसलिए बाबा कहते राजयोग करना है तो आंखें खोल करके करें। यदि आपने आंखें बंद कर दी तो आप ध्यान में चले जाएंगे, वो राजयोग नहीं रहेगा, ध्यान योग हो जाता है ना। ध्यान हो जाता है क्योंकि मेडिटेशन करते हैं उसमें आंखें बंद कर लेते हैं। भक्ति में ये एक आदत बनी हुई है कि हम ध्यान में बैठेंगे और आंखें बंद कर लेंगे। आंखें बंद करते ही कुछ ना कुछ नजारे दिखना शुरू कर देंगे। इसीलिए कमेंट्री करते हैं ताकि उनको नजारे, गाइडेड नजारे दिखाए जाए। जैसा हम बोलेंगे वैसा वो देखता जाएगा, इसलिए कमेंट्री की जाती है। उससे डायरेक्शन इधर उधर नहीं जाता है, परंतु वो डायरेक्शन भी हम, हाँ जी,
जैसे बाबा हमें ज्ञान सुनाते हैं तो बाबा हमें कभी स्वर्ग में ले जाते हैं, कभी हमारे दोपहर में ले जाते हैं, कभी ज्ञान से इधर उधर ले जाते। हमारे बुद्धि में चित्र तो इमेज होता है ना भाई?
हाँ बिल्कुल, कमेंट्री है ये भी, कमेंट्री है। परंतु ये कमेंट्री हमें समझाने के लिए है, राइट डायरेक्शन मिलने के लिए है। परंतु जो कमेंट्री मेडिटेशन के लिए करते हैं वो कमेंट्री राइट डायरेक्शन नहीं देती, वो हमें राइट डायरेक्शन नहीं देती। जिस प्रकार के चित्र वो दिखाते हैं वो परमधाम नहीं है, वो परमधाम का रास्ता नहीं है, वो परमधाम जाने की विधि नहीं है। वो तो मतलब हमें हटा देती है और ही गलत रास्ते पर, डायरेक्शन पर डाल देती है और हम उन गलत रास्ते पर रोजाना चलने के हैबिचुअल बन जाते हैं, जैसे भक्ति मार्ग में थे। ये भी एक भक्ति का रूप हो जाता है, क्योंकि ये ध्यान है, ये जो कमेंट्री है ये भी ध्यान है, क्योंकि इसमें भी आंखें बंद हो जाती हैं, कोई जिद करके आंखें खोलकर बैठा भी रहे तो वो फिर उतना अच्छी तरह से विजुलाइज नहीं कर सकता। विजुलाइजेशन तो आंखें बंद करके ही होता है, ना चाहते हुए भी उनकी आंखें बंद होंगी और उनको कहना पड़ता है कि भी या तो आंखें खुले रखना चाहो खुले रखो, बंद रखना चाहो तो बंद करो। तो आंखें खुली भी हम विजुलाइजेशन करते हैं, विजुलाइजेशन आंखें खुले में भी हो जाता है बंद में भी हो जाता है, ये डिपेंड करता है कि उनको कैसा अभ्यास है, परंतु उसे राजयोग नहीं कहते, राजयोग नहीं कहेंगे, क्योंकि जहां हमारे पास डायरेक्शन जो है ना हमारे अपने अज्ञानता वाले हैं, देह भान वाले हैं, क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है, तो कुछ नहीं रहा, ध्यान से नीचे उतरा तो कुछ नहीं, सपने में जैसे हम देख के आते हैं क्या क्या देख के आए, जब जैसे आंखें खुली तो कुछ भी नहीं है, वो सारे के सारे पता नहीं कहाँ भाग गए, हम अच्छा बड़ा बड़ा
खुली आंख से देखते हैं ना,
हाँ
खुली आंख से देखते हैं तो ज्ञान के हिसाब से देखते हैं,
हाँ
जब बंद आंखें कर लेते हैं ना तो हमारी बुद्धि काम करना बंद हो जाती, फिर वो बंद आंखें से फिर बुद्धि बोल तो चित्र फटकते रहते, फिर हम
कुछ भी देखते रहेंगे बस उसका कोई फायदा नहीं है। जैसे तुम्हारा भी होता है, बाबा समझा रहे हैं, जैसे तुम्हारा भी होता है, इसको कहा जाता है दिव्य दृष्टि, इसमें कुछ रखा नहीं है, इसमें कुछ रखा नहीं है। नवधा भक्ति बहुत करते हैं, वो भक्त माला ही अलग है, ये ज्ञान माला अलग है, रुद्र माला और विष्णु की माला है ना, वे सिर है भक्ति की माला। अभी तुम पढ़ रहे हो राजाई के लिए, तुम्हारा बुद्धि योग है टीचर के साथ और राजाई के साथ, जैसे कॉलेज में पढ़ते हैं तो बुद्धि योग टीचर के साथ होता है और बैरिस्टर खुद पढ़ाकर आप समान बनाता है, और जैसा वो पढ़ाएगा तो टीचर जो गाइड है वो जैसे बताता जाएगा फिर हम वही देखेंगे और वही बनेंगे, क्योंकि वो अपने जैसा बना सकता है, और यदि कोई हमारे को गाइड करने वाला नहीं है तो वो हमें क्या करेगा, भटका देगा। जैसे बाबा गाइड करेगा तो हम वैसा बनेंगे, और यदि कोई दूसरा गाइड करेगा तो जिसको खुद को पता नहीं कि परम धाम क्या है, वो दूसरे को परम धाम ले जाने का रास्ता क्या बताएगा। परमात्म डायरेक्शन पर कोई समझ गया है कि परम धाम क्या है तो वे दूसरों को भी बताएगा कि परम धाम ऐसा है, परम धाम यदि वो खुद जाएगा तो दूसरे को भी समझाएगा कैसे परम धाम जा सकते, अपने अनुभव शेयर करेगा, वो तो पता नहीं तो करेगा क्या, वो खुद भटक रहा है तो वो दूसरों को भी भटकाएगा। तो तुम्हारी ये है रूहानी पढ़ाई, तुम्हारा बुद्धि योग शिव बाबा के साथ है, उनको ही नॉलेजफुल ज्ञान का सागर कहा जाता है। जानी जाननहार का ये मतलब नहीं कि वो सबके दिलों को बैठ जानेगा, जानी जाननहार का मतलब है वो जानता है कि किसके दिल में क्या है। वो सबके दिलों को बैठ जानेगा नहीं, जानी जाननहार का मतलब ये नहीं कि वो सबके दिलों को बैठकर जानेगा कि इनके अंदर क्या चल रहा है। ये जो थॉट रीडर होते हैं वो सब सुनाते हैं, उसको भूत विद्या कहा जाता है। यहाँ तो बाप पढ़ाते हैं
जी, जैसे वो पर्चा खोलते उसको थॉट रीडर कहेंगे ना,
बिल्कुल। तो यहाँ तो बाप पढ़ाते, उनका जो सिस्टम है मैंने पहले चर्चा किया था कि उनका थॉट रीडिंग पर नहीं है, वो पर्चा थॉट रीडिंग पर नहीं खोलते हैं, थॉट रीडर या आत्माओं का रोल होता है कि वो थॉट रीड करके बताते हैं, ठीक है, वो बताओ, उनकी ये योग्यता अपनी नहीं है, ये याद रखना, ये जितने ये पर्चा खोलने वाले हैं ये दूसरी आत्माएं, ये वो खुद रोड रीड नहीं कर सकते, उन उनको पूछो, मैं बाबा बगेश्वर के कई बार के देखे हैं उसके जो भेजे थे। हाँ, क्योंकि वो कहता मुझे नहीं पता, मुझे बताया। मतलब ये बात ध्यान देने वाली है कि मुझे बताया, किसने बताया? वो आत्मा ने बताया। नहीं, वो खुद किसी का पर्चा नहीं खोल सकता। वो ये बात एक्सेप्ट करता है कि मैं नहीं खोल सकता। किसका पर्चा? बाबा, मतलब हमारा जो बाबा है, और जो भी बागेश्वर धाम का जो भी आत्मा है, जो जिस आत्मा का वहां पाठ चल रहा है, वो आत्मा ही आकर जिसका पर्चा खोलना है, नहीं खोलना है तो नहीं खोलना। और वो बदलना चाहे तो बदल नहीं सकता।
भाई बाप तो खोल सकता है उसका पर्चा।
किसका?
जिसका भी है वो बाप तो बाप खोल सकता है ना पर्चा उसका।
उसके बाबा या उनका कोई बाप?
ना उस आत्मा का
नहीं भाई जी। पर्चा जो है ना, जिसका खुलना है वो पर्चा नहीं खोल सकता। उसके अंदर जो आत्मा है उसकी पावर है कि वो पर्चा किसका भी खोल सकती है, क्योंकि वो आत्मा थॉट रीडिंग करके बताती है। बात सारी ये है, ये समझने वाली बात। उसके बाद विधि बता दी जाती है, फिर विधि नहीं बतानी चाहिए। विधि बता देने का मतलब होता है कि यदि आपने विधि प्रॉपर नहीं की तो आपको सफलता नहीं मिली, आप विधि करते तो आपको सफलता मिल जाती। समझ में आई ये बात? तो ये विधि बता देते हैं ताकि जो है ना वो कर लेता है तो कहते हैं ठीक है, अभी मैंने किया नहीं तो क्या करूंगा, मेरा ही गलती है। गलती तो उसे अपने सिर पर लेनी पड़ेगी, उसके ऊपर नहीं। जो मिल गया तो उसके पास, नहीं मिला तो उसके पास। और साइकोलॉजिकली एक नियम और सिस्टम होता है कि 30% 40% तो हमारे जो है ना संकल्प ही काम कर लेते हैं। हमने सोच लिया कि दवाई तो बेकार है, वो दवाई हमारे पर असर नहीं करेगी। हमने सोच लिया कि दवाई बेस्ट है, बहुत अच्छी दवाई है, चाहे वो दवाई ना हो वो हम ठीक हो जाएंगे। वो हमारे अपने आप से जो हम सबकॉन्शियस माइंड से जो हम अपने आप को देते हैं वो भी हमारे ऊपर असर करता है, संकल्प देते हैं। तो मनुष्य से देवता बनाने के लिए, यहाँ तो बाप पढ़ाते हैं मनुष्य से देवता बनाने के लिए, गायन भी है कि मनुष्य देवता की एक करत न लागी बात। अभी तुम बच्चे समझते हो हम अभी ब्राह्मण बने हैं, फिर दूसरे जन्म में देवता बनेंगे। आदि सनातन देवी देवता हो ही गाए जाते हैं, शास्त्रों में तो ढेर कहानियां लिख दी हैं। ये तो बाप डायरेक्ट बैठ पढ़ाते हैं, भगवान ही ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर है। भगवान ही क्या है? ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर है। तुम बच्चों को वर्षा देते हैं, ये पढ़ाई तुम्हारी 21 जन्मों के लिए, तो कितना अच्छी रीति पढ़ना चाहिए। ये रूहानी पढ़ाई बाप एक ही बार आकर पढ़ाते हैं, नई दुनिया की स्थापना करने लिए। नई दुनिया में इन देवी देवताओं का राज्य था। बाप कहते हैं मैं ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहा हूं। जब ये धर्म था तो और कोई धर्म नहीं था, अभी और सब धर्म है। इसलिए त्रिमूर्ति पर भी तुम समझाते हो ब्रह्मा द्वारा स्थापना एक धर्म की, अभी वे धर्म है ही नहीं। गाते भी हैं मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप पे ही तरस परोए। हमारे में कोई गुण नहीं कहते तो बुद्धि गॉड फादर की तरफ ही जाती है। जब ये कहते हैं कि हमारे में कोई गुण नहीं तो किसके किस कहां से गुण मिलेंगे? एक गॉड फादर से ही मिल सकते हैं, और कहीं से हमें गुण मिल नहीं सकते। जब वो ये कहते हैं हमारे में कोई गुण नहीं, तो बुद्धि गॉड फादर की तरफ ही जाती है, उनको ही मर्सीफुल कहा जाता है। बाप आते ही हैं बच्चों के सब दुखों को खलास करने, 100% सुख देने। कितना रहम करते हैं, तुम समझते हो बाबा के पास हम आए हैं तो बाप से पूरा सुख लेना है, वो है ही सुख धाम और ये है ही दुख धाम। इस चक्र को भी अच्छी रीति समझना है, शांति धाम सुख धाम को याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। शांति धाम को याद करेंगे तो जरूर शरीर छोड़ना पड़े, तब आत्माएं शांति धाम में जाएंगी। एक बाप के सिवाय और कोई की याद ना आए, एकदम लाइन क्लियर चाहिए। एक बाप को याद करने से अंदर खुशी का पारा चढ़ता है। इस पुरानी दुनिया में तो अल्पकाल क्षण भंगुर सुख है, ये साथ नहीं चल सकता, साथ ये अविनाशी ज्ञान रत्न ही चलते हैं, यानी ये ज्ञान रत्नों की कमाई ही साथ चलती है, जो फिर तुम 21 जन्म प्रारब्ध भोगते हो। विनाशी हाँ, विनाशी धन भी साथ उनका जाता है जो बाप को मदद करते। लाइन समझ में आई है? तुम क्या क्या बोल जाता है बाबा, पहले नहीं बताता मैं क्या बताऊंगा ना।
इस बैन को भाजी फिर से बताइए।
हाँ, इसलिए जाना पड़ रहा है ना, समझ में नहीं। यानी ये ज्ञान रत्नों की कमाई ही साथ चलती है, पहली बात समझ में आ गई। अविनाशी ज्ञान रत्न है, अज्ञान रत्न भी तब हमारे साथ जाएंगे जब हमने उन ज्ञान रत्नों से संस्कार बना दिए होंगे। हमें ये ज्ञान रत्न मूजबानी याद वाले नहीं जाएंगे, ये हमारे संस्कार के रूप में साथ जाएंगे। यदि हमने किसी भी ज्ञान की बात को अपना संस्कार नहीं बनाया है तो वो हमारे साथ जाने वाला नहीं, जो फिर तुम 21 जन्म प्रारब्ध भोगते हो, क्योंकि संस्कार के रूप में जाएगा, क्योंकि हर जन्म में वहां का वातावरण, वहां की परिस्थितियां, वहां की भाषा, वहां का सब कुछ चेंज हो रहा है, पर तो हमारे संस्कार जो है वहां के अनुसार ऑटोमेटिक उसे कन्वर्ट करते रहते हैं। अब आगे जो लाइन बोली है इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है, जो गड़बड़ करने वाली है। हाँ, विनाशी धन भी साथ उनका जाता है जो बाप को मदद करते, विनाशी धन भी उनका साथ जाता, जितने रुपए आपके बाबा को दे देंगे वो रुपए वहां मिल जाएंगे, रुपए नहीं मिलेंगे, वहां सोने के महल मिल जाएंगे। आप यहाँ 1 रुपया देंगे वहां आपको महल मिल जाएगा, ये भक्तों को खुश करने वाली बात, भक्तों को बुद्धू बनाने वाली बात। बाकी बुद्धू बना करके भी उनका कल्याण करते, बुद्धू बनने
यज्ञ में पैसे लगाना,
यज्ञ में पैसा लगाना माना सेवा करना, जितनी आत्माओं को आपके तन मन और धन से सुख मिलेगा, परमात्मा से मिलने का अवसर मिलेगा, वो आपके सहयोगी बनेंगे, वो आपके सहयोगी बनेंगे, क्योंकि ये स्थूल धन वहां नहीं जाता। कोई भी चीज किसी दूसरे देश में दूसरे उसमें नहीं जा सकती, केवल वहां आपको जितना सीधा आपने जितनी खुशी किसी आत्मा को आपने दी है, वो भी अपने व्यवहार के द्वारा अपने कर्म के द्वारा आपको सुख देने के निमित्त बनेगा। ये बात पशु पक्षी जीव जंतु सबके ऊपर लागू होती है, ठीक है, हमें देना है, हमने अपने व्यवहार से जिन पशुओं को जिन पक्षियों को प्यार दिया होगा, सहयोग दिया होगा, चाहे उसे खाना खिलाने में या जो भी किस प्रकार की जो सुविधा उसे दी होगी उसको अब हमने अपने व्यवहार से प्रैक्टिकल जो भी नाशवान सहयोग दिया सतयुग में वो पक्षी पशु आकर क्या करेंगे हमारे लिए बाबा ने कहा मीठी मीठी बोलियां बोलेंगे ऐसे कलरव करेंगे ऐसे कर्तव्य करेंगे जिसको देखकर हमें बहुत खुशी होगी हमें सुख की अनुभूति होगी हमने भी खुशी दी है तो वो भी हमें खुशी देने के निमित्त बनेंगे और यदि हमने अपने गलत व्यवहार से उनको दुख पहुंचाया है तो वो भी अपने व्यवहार से आपको दुख का अनुभव भी कराएंगे हमें दोनों पार्ट एक साथ देख सकते हैं बाबा तो एक पार्ट दिखा रहा है परंतु बाबा हमें समझ में आना चाहिए कि हम जो करेंगे वो मिलेगा जिस भी आत्मा के साथ चाहे वो मनुष्य आत्मा हो चाहे पशु पक्षी की आत्मा हो चाहे कोई भी आत्मा कोई भी आत्मा बाबा हमारी भी कोड़ियां ले वहां महल दे दे बाबा हमारी कोड़ियां लेकर क्या करते हैं अनेक आत्माओं को ज्ञान देने के निमित्त खर्च करते हैं जब वो यहाँ राइट खर्च कर रहे हैं राइट खर्च कर रहे हैं तो हमारे पास राइट सामान हमारे पास होगा बाप कोड़ियों के बदले कितने रत्न देते हैं जैसे अमेरिकन लोग होते हैं बहुत पैसे खर्च कर पुरानी पुरानी चीजें खरीद करते हैं पुरानी चीज का मनुष्य बहुत दाम ले लेते हैं अमेरिकन लोग से पाई चीज को हजार ले लेंगे और बाबा भी कितना अच्छा ग्राहक है भोलानाथ गाया हुआ है ना मनुष्यों का भी ये पता नहीं है कि वो तो शिव शंकर एक कह देते हैं उनके लिए कहते भर दो झोली शंकर के लिए कहते भर दो झोली अभी तुम बच्चे समझते हो हमको ज्ञान रत्न मिलते हैं जिससे हमारी झोली भरती है ये है बेहद का बाप वे सिर्फ शंकर के लिए कह देते और फिर दिखाते हैं दतुरा खाते थे भांग पीते थे क्या क्या बातें बैठ बनाई तुम बच्चे अभी सदगति के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हो ये पढ़ाई है ही बिल्कुल शांत में रहने की ये बत्तियां आदि जो जलाते हैं शो करते हैं वे भी इसलिए कि मनुष्य आकर पूछे आप शिव जयंती इतनी क्यों मनाते हो शिव ही भारत को धनवान बनाते हैं ना इन लक्ष्मी नारायण को स्वर्ग का मालिक किसने बनाया ये तुम जानते हो ये लक्ष्मी नारायण आगे जन्म में कौन थे ये आगे जन्म में जगत अम्बा ज्ञान ज्ञानेश्वरी थी जो फिर राजेश्वरी बनती है अब पद किसका बड़ा है देखने में तो ये स्वर्ग के मालिक हैं जगत अम्बा कहाँ की मालिक थी इनके पास क्या क्यों जाते हैं ब्रह्मा को भी 100 भुजा वाला 200 भुजा वाला 1000 भुजा वाला दिखाते हैं ना कितने जितने बाप बच्चे होते हैं तो उतनी भुजाएं बढ़ती जाती हैं जगदम्बा को भी लक्ष्मी से जास्ती भुजाएं दी लक्ष्मी को कम भुजाएं 4 दिन से ज्यादा ज्यादा महालक्ष्मी के रूप में और जगदम्बा को तो बहुत भुजाएं देते 16, 8, 4 ज्यादा जितना ज्यादा लगाना चाहे लगा सकते उन्होंने समझा कि शक्तियां दिखानी है तो उतनी भुजाएं लगा दो जगदम्बा को भी लक्ष्मी से जास्ती भुजाएं दी उनके पास ही जाकर सब कुछ मांगते हैं बहुत आशाएं ले जाते हैं बच्चा चाहिए ये चाहिए लक्ष्मी के पास कभी ऐसी आशाएं नहीं लेके जाएंगे ये तो सिर्फ धनवान है जगत अम्बा से तो स्वर्ग की बादशाही मिलती है ये किसी को पता नहीं है जगत अम्बा से क्या मांगना चाहिए ये तो पढ़ाई है ना जगत अम्बा क्या पढ़ाती है राजयोग, इसको कहा ही जाता है बुद्धि योग। तुम्हारी और सब तरफ से बुद्धि निकल एक बात से लग जाती है। बुद्धि तो अनेक तरफ भागती है ना। अब बाप कहते हैं मेरे साथ बुद्धि योग लगाओ, नहीं तो विकार में विनाश नहीं होंगे। इसलिए बाबा फोटो निकालने की भी मना करते हैं। ये तो इनकी देह है ना, फोटो निकालेंगे तो इनका मेरा फोटो थोड़ा है, ये तो इनकी देह है ना। बाप खुद दलाल बन कहते, बाबा कहते ये दलाल नहीं है, मैं खुद ही दलाल हूं। बाप खुद दलाल बन कहते हैं तभी तुम्हारा वो हथियाला कैसे है। अब तुम्हारा जो वो हथियाला है ना कैंसल, तो आपने हाथ लेवा किया हुआ है कोर्ट में, अपना मैरिज करते हैं तो हथियाला बांधते हैं पति पत्नी में कि अब तुम अलग नहीं होंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक दूसरे के साथ ही बन करके चलेंगे। कपड़ा होता है जो भी होता है बांधते हैं उसको, तो कहने का मतलब यह है कि वो एक एक सिंबल होता है कि अब तुमने साथ चलना है। आगे भी चलना पड़ सकता है, पीछे भी चलना पड़ सकता है, क्यों आगे चलना पड़ता है क्यों पीछे चलना पड़ता है उसके लिए भाषण भी दोनों का सिर खाया जाता है। वो सुनना नहीं चाहते परंतु बेचारे क्या करें, मजबूरी है सुनना पड़ता है। बाद में पूछो क्या क्या, बस सुन ले बताया था ये ठीक है, पता किसी याद किसी को भी नहीं रहता हमने, क्योंकि उन्होंने उसको चलना तो है ही नहीं जो याद रहे, सिर्फ उस टाइम सुनते हैं परंतु पता नहीं होता मतलब उनका पता ही नहीं ना, उन्होंने इस मतलब से सुना नहीं, उन्होंने तो इससे मतलब सब हमारी शादी हो जाएगा सितंबर तो जो सुनाने सुना देगा, और ये उसके लिए पैसे देते हैं भैया थोड़ा धीरे धीरे जल्दी कर दे जान दे तो क्या हो ठीक। तो काम चिता से उतर, अब ज्ञान चिता पर बैठो, काम चिता से उतरो, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो तो विकार में विनाश होंगे, और कोई मनुष्य ऐसे कह ना सके। मनुष्य को भगवान भी नहीं कहा जा सकता, तुम बच्चे जानते हो बाप ही पतित पावन है। बाप ही क्या है, पतित पावन है। वही आकर काम चिता से उतार ज्ञान चिता पर बिठाते हैं, वो है रूहानी बाप। वे इनमें बैठ कहते हैं तुम भी आत्मा हो, औरों को भी यही समझाते रहो। बाप कहते हैं मन मना भव, मन मना भव कहने से ही स्मृति आ जाएगी। इस पुरानी दुनिया का विनाश भी सामने खड़ा है, बाप समझाते हैं। ये है महाभारी महाभारत, ये है महाभारी महाभारत लड़ाई। कहेंगे लड़ाई तो विलायत में भी होती है, फिर इसको महाभारत लड़ाई क्यों कहा जाता, कहते हैं भारत में ही यज्ञ रचा हुआ है, इनसे ही विनाश ज्वाला निकली, इनसे क्या निकली है, विनाश ज्वाला निकली है। तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए तो मीठे बच्चे पुरानी दुनिया का जरूर विनाश होना चाहिए। तो इस लड़ाई की जड़ यहाँ से निकलती है, इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से, इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से महाभारी लड़ाई विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। बल शास्त्रों में लिखा हुआ है परंतु किसने कहा ये नहीं जानते, किसने कहा ये नहीं जानते। अभी बाप समझा रहे हैं नई दुनिया के, समझा रहे हैं नई दुनिया के लिए। अभी तुम राजाई लेते हो, तुम देवी देवता बनते हो, तुम्हारे राज्य में और कोई ही होना नहीं चाहिए। दैविल बल विनाश होता है, बुद्धि में याद रहना चाहिए। कल हमने राज्य किया था, बाप ने राज्य दिया था, फिर 84 जन्म लेते आए अभी फिर बाबा आया हुआ है, तुम बच्चों में ये तो ज्ञान है ना, बाप ने ये ज्ञान दिया है। जब बेटी धर्म की स्थापना होती है तो बाकी सारे डेविल वर्ल्ड का विनाश होता है। ये बाप बैठ ब्रह्मा द्वारा सब बातें समझाते हैं। ब्रह्मा भी शिव का बच्चा है, विष्णु का भी राज समझाया है कि ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा बनता है, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा बनता है। अभी तुम समझ गए हो हम ब्राह्मण हैं, फिर देवता बनेंगे, फिर चौरासी जन्म लेंगे। यह नॉलेज देने वाला एक ही बात है तो फिर कोई मनुष्य से ये नॉलेज मिल कैसे सकती है? इसमें सारी बुद्धि की बात है। बाप कहते हैं कि सब तरफ से बुद्धि तोड़ो और बुद्धि ही बिगड़ती है। बाप कहते हैं कि मुझे याद करो तो विकार में विनाश होंगे। गृहस्थ व्यवहार में ढल रहो, एक ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ी है। जानते हो हम पढ़कर ये बनेंगे, तुम्हारी पढ़ाई है ही संगम युग की। अभी तुम ना इस तरफ हो और ना उस तरफ हो, तुम बाहर हो। बाप को शिवैया भी कहते हैं। गाते भी हैं हमारी नैया पार ले जाओ। इस पर एक कहानी भी बनी हुई है। कोई चल पड़ते हैं, कोई रुक जाते हैं। अब बाप कहते हैं मैं इस ब्रह्मा के मुख द्वारा बैठ सुनाता हूँ। ब्रह्मा कहाँ से आया? प्रजापिता तो जरूर यहाँ चाहिए ना? मैं इनको एडॉप्ट करता हूँ, इनका भी नाम रखता हूँ। तुम भी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो जो कलयुग अंत में है, फिर वही सतयुग आदि में जाएंगे। तुम ही पहले पहले बाप से अलग हो, पार्ट बजाने आए हो। हमारे में भी सब तो नहीं कहेंगे ना, ये भी मालूम पड़ जाएगा कौन पूरे 84 जन्म लेते हैं। इन लक्ष्मी नारायण की तो गारंटी है ना, इनके लिए ही गायन है श्याम सुंदर, इनके लिए ही गायन है श्याम सुंदर। देवी देवता सुंदर थे, सांवरे से सुंदर बने हैं, गांवड़े के छोरे से बदल सुंदर बन जाते हैं। इस समय सब छोरे छोरियां हैं, ये बेहद की बात है। उनको कोई जानते नहीं, कितनी अच्छी अच्छी संतानी दी जाती है हर एक के लिए। सर्जन एक ही है, ये है अविनाशी सर्जन। ये क्या है? अविनाशी सर्जन। योग को अग्नि कहा जाता है क्योंकि योग से ही आत्मा की अलाय खाद निकलती है। योग अग्नि से तमो प्रधान आत्मा सतो प्रधान बनती है। यदि आग ठंडी होगी तो अलाय निकलेगी नहीं, खोट जो है उसमें से नहीं निकलेगा ना, पिघलेगी तो खोट निकलेगा ना। यदि आग ठंडी होगी, हमारे अंदर परिवर्तन करने की, बाबा के साथ कनेक्शन हमारा जुड़ा हुआ नहीं होगा, योग अग्नि नहीं होगी। किसको याद है योग अग्नि किसे कहते हैं, या योग को अग्नि क्यों कहते हैं और कब कहते हैं? योग को अग्नि क्यों कहते हैं, कब कहते हैं? हाँ जी,
जब हम बाबा के नाम में अपने आप को निरंतर सुधारते
हैं। और उसे अग्नि क्यों कहते हैं?
बाबा बाबा की श्रीमत पर चलने से अनुभवी बनते जाते हैं, उसको योग अग्नि कहते हैं।
अग्नि क्यों कहते हैं?
किसी आग लगी,
हाँ आग लगी हो, निरंतर होती है आग। आग ये नहीं है कि बाबा की श्रीमत पर लगातार चलना। आज तो बाबी कोई समस्या आई, बाबा के हिसाब से सोचा, समाधान किया, उसके बाद फिर छोड़ दिया। मतलब बाबा की हर बात को मानना, एक बात को माना, दो को नहीं माना, क्या फायदा हुआ। हमने बाबा की हर बात को मानेंगे तब हमारे में से खाद निकलती जाएगी, हमारा सुधार होता जाएगा। यदि हम कहना ही नहीं मान रहे होंगे तो हमारे अंदर, क्योंकि जैसे निरंतर हमारे अंदर सुधार आता जा रहा है, कब आता जाएगा, जब तक कहना मानते जाएंगे। जहां कहना मानना बंद किया वहीं फिर बिगाड़ शुरू हो जाएगा। तो सुधार तभी आएगा निरंतर, जब हम परमात्मा की डायरेक्शन पर निरंतर चलेंगे। रुक गए तो फिर ठंडी हो गई ना, आग नहीं रही ना, तो चीज तो बनने से बिगड़ जाएगी, वही तो वही खड़ी हो जाएगी, सुधरना बंद हो जाएगा। याद को योग अग्नि कहा जाता है, याद को योग अग्नि कहा जाता है, तब जब वो निरंतर चलती रहे, जिससे विकार में विनाश होते हैं। तो बाप कहते हैं, तुमको कितना समझाता रहता हूँ, रोजाना समझाता रहता हूँ, कितना समझाते हैं, धारणा भी तो हो ना, केवल सुनते रहो और अपने जीवन में इसको धारण नहीं करेंगे तो आप कहते अच्छा मन मना भाव बैठ कर अपने मन को मनाओ समझाओ। इसमें तो थकना नहीं चाहिए, अपने आप को सच समझाने से थकना नहीं चाहिए। बाप को याद करना भी भूल जाते हैं। ये पतियों का पति, बापों का बाप, पतियों का पति, बापों का बाप है, ज्ञान से कितना हमारा श्रृंगार करते हैं। निराकार बाप कहते हैं और सबसे बुद्धि योग तोड़, मुझ अपने बाप को याद करो, मुझ अपने बाप को याद करो। बाप सभी का एक ही है, तुम्हारी अचरती कला होती है। कहते हैं ना, तेरे पाने सर्व का भला। बाप आए हैं सर्व का भला करने। रावण तो सबको दुर्गति में ले जाते हैं, राम सबको सदगति में ले जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे चिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर एक, बाप की याद से अपार सुखों का अनुभव करने के लिए बुद्धि की लाइन क्लियर चाहिए। याद जब अग्नि का रूप ले तब आत्मा सत्वप्रधान बने। बाप कोड़ियों के बदले रत्न देते हैं, ऐसे भोलानाथ बाप से अपनी झोली भरनी है। शांत में रहने की पढ़ाई पर सदगति को प्राप्त करना है। शांत में रहने की पढ़ाई पर सदगति को प्राप्त करना है। वरदान, शांत में रहने की पढ़ाई क्या हो सकती है, समझ सकते हैं, सोचना। वरदान, माया के बंधनों से सदा निर्बंधन रहने वाले योग युक्त बंधन मुक्त भव। बंधन मुक्त की निशानी है सदा योग युक्त। जिसका कनेक्शन बाबा के साथ जुड़ा हुआ है वो संसार के बंधनों से मुक्त होगा। योग युक्त बच्चे जिम्मेवारियों के बंधन व माया के बंधन से मुक्त होंगे। अब जिम्मेवारियों के बंधन से मुक्त होने का मतलब ये नहीं है कि अब हम कुछ नहीं करेंगे, हम हर चीज को काम को करेंगे पर तो उसे बंधन नहीं समझेंगे। हाँ, जब समझ लेते हैं कि मुझे ये करना है, ये मेरी मतलब जिम्मेवारी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसे करने में दुख नहीं होता। जहाँ हम समझते हैं कि मेरे को ऐसे ही करना पड़ रहा है तो वहाँ बड़ा भारी लगता है। जैसे माँ बच्चे के लिए या जिससे प्यार होता है उसके लिए कुछ भी करते हैं, उनको कोई परेशानी नहीं होती, कोई दुख घुटान नहीं होती है। परंतु जिसके लिए दिल नहीं कर रहा है, करना पड़ रहा है, उसके लिए प्यार नहीं है और करना पड़ेगा क्या करें, तो वो देना बचने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी बातें क्या होती है, प्यार के अभाव को दिखाती, मन का भी बंधन ना हो। लौकिक जिम्मेवारी तो खेल है, इसलिए डायरेक्शन प्रमाण खेल की रीति से हंस कर करो, खुशी से काम करो। खुशी से काम करो तो सहज हो जाता है, रो कर करो तो भारी हो जाता है। तो कभी छोटी छोटी बातों में थकेंगे नहीं। अगर बंधन समझते हैं तो तंग होते हो, क्या क्या क्यों का प्रश्न उठता है। लेकिन जिम्मेवार बाप है, आप नियमित हैं, इस स्मृति से बंधन मुक्त बनो तो योगी बने। स्लोगन है, करण करावन हार की स्मृति से भान और अभिमान को समाप्त करो। ध्यान देना, दो शब्द है, एक भान है और एक अभिमान, जिसे देह भान और देह अभिमान कहते हैं। करण करावन हार की स्मृति से याद रखो कि मैं करण हार हूं और करावन हार भी हूं। शिव बाबा भी करण हार भी है और करावन हार भी है। ये दो बातें बहुत अच्छी तरह से हमने कई बार चर्चा की है, परंतु आज आपने इस रीति से छोट में समझना है। जब मैं करण हार हूं तो मैं कौन हूं जी, करण हार मैं हूं, मैं कौन हूं और कैसे, मैं करण हार कैसे हूं, कोई बता दो फटाफट। करण हार मैं आत्मा हूं, क्या करती हूं, ज्ञान लेती हूं। बाबा ज्ञान देता है वो करण हार है, क्योंकि वो ज्ञान देता है। हम आत्मा ज्ञान देती है, मैं भी करण हार क्योंकि ज्ञान ले रही हूं, वो दे रहे हैं। अब उसके बाद आता है परमात्मा हमसे करवाते हैं, हम आत्मा भी परमात्मा, हम आत्मा भी मतलब जब आगे देह को देह से करवाती है ना, देह के कर्म इंद्रियों से काम करवाती है, तो भी करवाने वाली मैं कौन हूँ, आत्मा हूँ। करण हार हूँ तो भी मैं आत्मा हूँ, करावन हार हूँ तो भी मैं आत्मा हूँ। ये याद रहेगा तो देह का भान भी नहीं आएगा और देह का अभिमान भी नहीं आएगा। सारा दिन ये समझो मैं करण करावन हार हूँ। करण हार ज्ञान लेने के लिए, करावन हार इस शरीर से कर्म कराने के लिए। अव्यक्त इशारा, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। अपवित्रता सिर्फ किसको दुख देना या पाप कर्म करना नहीं, लेकिन स्वयं में सत्यता स्वच्छता विधि पूर्वक अगर अनुभव करते हो तो पवित्र हो। जैसे कहावत है, सत्य की नाव डूबती नहीं लेकिन डगमग होती है, तो विश्वास की नाव सत्यता है, ऑनेस्टी है, जो डगमग होगी लेकिन डूबेगी नहीं। इसलिए सत्यता की हिम्मत से परमात्म प्रत्यक्षता के निमित्त बनो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।